वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 18। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। अनंत ने कालशंकु के चक्र से भागने की लाख कोशिश की मगर वो भाग नहीं सका। 15 फरवरी के नजदीक आते आते उसे लग रहा था कि इस बार वो सब नहीं होगा जो पहले दो बार हो चुका था, मगर जब हकीकत से उसका सामना हुआ तो उसे समझ आ गया कि वो इस जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। उसे यह भी पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर अब वो कुछ कर सकने की हालत में रहा ही नहीं था, क्योंकि इस बार तो वो सीधे बल्लियों की कैद में था। देवता ने शायद सही ही कहा था कि इंसान अपने प्रारब्ध से भाग नहीं सकता है। अब आगे 15 फरवरी 2019 सुबह का वक्त, आखिर वो दिन आ चुका था जिस दिन इस चक्र को पूरा होना था, यानी वो दिन जब सुशांत की मौत हो जाने वाली थी। पता नहीं अनंत इस बार क्या कर पाएगा। पिछली दोनों बार वो पूरे घटनाक्रम से अनजान था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका, मगर इस बार तो सब कुछ पता होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत इस वक्त पिंजरे में बंधे उस जानवर की जैसी हो गई थी जिसे पता होता है कि थोड़ी ही देर में उसकी गर्दन पर छुरी चलने वाली है और वो चाहकर भी बच नहीं सकता है। ऐसे वक्त में कई जानवर प्रतिरोध छोड़ देते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं कि उनकी नियति क्या है। अनंत की हालत भी लगभग ऐसी ही थी, मगर वो इस नियति को स्वीकारने के मूड में हरगिज नहीं था। इस वक्त उन्हें किसी अनजान उजाड़ सी जगह पर कैद करके रखा गया था। झाड़ियों से घिरी जगह के बीच कुछ तंबू लगे हुए थे और इन्हीं में से कुछ तंबुओं में अनंत और उसके साथी कैद थे। अनंत को सबसे अलग रखा गया था, बाकी साथियों के तंबू में पहरा दे रहे बदमाशों को साफ निर्देश थे कि कोई भी भागने की या उलझने की कोशिश करे तो उसे सीधे गोली मार देनी है। सुबह अनंत ने अपने साथियों से एक बार फिर से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। शाम होते होते बूढ़ा एक बार फिर अनंत से मिलने आ गया। उसने अनंत से कहा, तू तैयार है? अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए बूढ़े ने कहा, जो होनो है वो होके रहवेगो और तने मां के साथ चलनो ही पड़ेगो। आखिरकार अनंत ने कहा, और अगर मैं चलने से मना करूं तो? बूढ़ा गुर्राया, तने चलनो ही पड़ेगो, तू जाने है काल शंकु कोई न माफ ना करे है, तू काल शंकु ने नाराज करियो है, तने भुगतनो ही पड़ेगो। अनंत ने अपना आखिरी दांव चला, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना वहां केवल सुशांत की मौत नहीं हुई थी, सुशांत के बाद अनूप सिंह के आदमियों ने बबूती और आपके सारे साथियों को भी। तो अनंत की बात सुनते ही बूढ़े के चेहरे के भाव बदल गए। अनंत को लगा जैसे उसने बूढ़े की नस दबा दी है, इसलिए उसने आगे कहा, जब हमें पता है कि वहां कोई नहीं बचेगा, ना सुशांत, ना बबूति और ना ही आप, तो हम वहां जा ही क्यों रहे हैं? बूढ़े ने अनंत की तरफ रहस्यमयी निगाहों से देखा और मुस्कुरा उठा। अनंत इस बात का मतलब समझ नहीं पाया था। उसने फिर से पूछा, आपको पता है आप लोग जिंदा नहीं बच पाओगे, इसके बाद भी आप लोग? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तू थारी फिकर कर, मां की फिकर करनी मने आवे है, मने पतो है अनूप सिंह को काई करना है। यह सुनते ही अनंत चौंक पड़ा, मतलब? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो एक विद्रूप सी हंसी हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। अनंत सोच में पड़ गया था, इसका क्या मतलब था? यानी इन लोगों ने अनूप सिंह को मरवा तो नहीं दिया? ओ, अनंत बल्लियों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब बल्लियों ने उसके साथियों को मारने की धमकी दी तो उसे मन मारकर हां करनी पड़ी। इसके बाद भी बबूती ने साफ कह दिया कि उसके साथी उस वक्त तक उनके पास बंधक बने रहेंगे जब तक कि वो वापस लौट कर नहीं आता है। अनंत ने लाख कोशिश की कि वो सुशांत को भी यहीं कैद रहने दे, मगर बूढ़ा हरगिज नहीं माना। अब सुशांत भी उनके साथ कालशंकु पहाड़ पर जाने वाला था। जाने से पहले अनंत को एक बार नलिनी से बात करने का मौका मिला। नलिनी की आंखों से आंसू बह निकले। अनंत, मुझे तुम्हारा यकीन कर लेना चाहिए था। अनंत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने नलिनी को हिम्मत बधाई और भारी मन से वहां से जाने लगा। तभी नलिनी उससे लिपट गई। अनंत भी पिघल उठा, उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, काफी इंतजार किया मैंने, पर अब बहुत देर हो गई है। नलिनी ने पूछा, क्या हमारी फिर से मुलाकात होगी? अनंत के मुंह से निकल पड़ा, नहीं पता। अनंत की बात सुनते ही नलिनी का दिल बैठ गया। तभी अनंत ने आगे कहा, या पता नहीं जब हमारी मुलाकात हो तो तुम्हें कुछ याद हो भी या नहीं। अनंत भी मायूस हो गया। अचानक से नलिनी को कुछ सूझा। उसने कहा, अगर हमारी फिर से मुलाकात हो और मुझे कुछ याद ना रहे तो तुम मुझे याद दिलाओगे। पर कैसे? इस बार भी तो मैंने काफी कोशिश की, मगर अनंत सही कह रहा था। उसकी हर मुमकिन कोशिश के बाद भी नलिनी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था। तब नलिनी ने कहा, तुम मुझे बताना कि मैं बचपन से ही अनंत को पाना चाहती थी। अनंत ने हैरत के साथ कहा, क्या? नलिनी ने जवाब दिया, अरे हां, ये बात मेरे फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को पता नहीं है। स्कूल टाइम में मैंने एक बार कविता लिखी थी, बस उस कविता की लाइन है ये। अनंत को नलिनी का सुझाव अच्छा लगा। उसने सहमति जताते हुए कहा, ओके, मैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उससे पहले ही दो हथियारबंद लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए थे। ये इशारा था कि मुलाकात बस यहीं तक की है। अनंत ने नलिनी की तरफ देखा और उन लोगों के साथ चल पड़ा। उसे जाते देख नलिनी का दिल डूबा जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि पता नहीं अब उसकी अनंत से मुलाकात ना जाने किन हालात में होगी। पता नहीं मुलाकात होगी भी या नहीं। इधर फिर से एक बार अनंत और सुशांत मौत के सफर पर निकल पड़े थे। अनंत ने काफी कोशिश की कि वो प्रारब्ध को बदल सके, मगर वो कुछ नहीं कर सका। और सुशांत, वो भी एकदम चुप था। ऐसा लग रहा था कि वो भी प्रारब्ध को स्वीकार कर चुका था। आखिरकार वो लोग फिर से कालशंकु पहाड़ पर थे। अनंत ने आसमान की तरफ देखा। आसमान में सभी ग्रह दिखाई देने लगे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। सुशांत उसकी तरफ ही देख रहा था। दोनों की निगाहें मिलते ही सुशांत फीकी सी हंसी हंस दिया। इसी नजारे के लिए कह रहा था ना तू? सुशांत ने आसमान में देखते हुए कहा। जवाब में अनंत बस गर्दन हिलाकर रह गया। सुशांत फिर से हंस दिया। यार, वाकई में नजारा ऐसा है जिसके लिए जान भी दी जा सकती है। अब अनंत ने कहा, मेरे हिसाब से बहुती पिछली बातों के बारे में नहीं जानता है, इसलिए तू उसे ऐसा कोई मौका मत देना जिससे वो तुझसे उलझने की कोशिश करे। उसकी बात सुनकर सुशांत मुस्कुरा उठा और फिर से आसमान को निहारने लगा। कुछ देर बाद दोनों एक बार फिर बूढ़े और भभूति के साथ थे। बूढ़ा अनंत को कुछ समझा रहा था, जबकि भभूति, उसे यह सारी कवायद बेमतलब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अनंत और सुशांत दोनों से चिढ़ा बैठा था। सुशांत भभूति को गौर से देखने लगा। शायद वो समझना चाहता था कि इस भभूति में ऐसा क्या है जो दो बार उसकी जान ले चुका था। पता नहीं भभूति के दिमाग में क्या आया कि उसने अचानक से अपनी रिवॉल्वर सुशांत की तरफ तान दी। एकदम से हुए इस घटनाक्रम ने सुशांत के साथ साथ अनंत को भी चौंका दिया। वो अंजाम से वाकिफ था, इसलिए वो भागकर भभूति को रोकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन भभूति के आदमियों ने उसे आगे नहीं जाने दिया। भभूति न जाने क्या सोच रहा था, लेकिन इस पूरे वाकये को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह समझ नहीं आ रहा था कि वो सुशांत को केवल डराना चाहता था या उसके इरादे कुछ और थे।
ए सेरी बिलाव, यो भभूति बल्ली को इलाको है, अठे भभूति की मर्जी के बगैर पत्तो भी कोनी।
तभी अचानक से कुछ हुआ। भभूति की बात पूरी करने से पहले ही वहां रिवॉल्वर के फायर की आवाज गूंज उठी। एक के बाद एक कुल दो गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। अचानक से जो कुछ घटा था उसे देखकर अनंत यकीन नहीं कर पा रहा था। सुशांत के हाथ में भभूति की रिवॉल्वर थी और भभूति जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। असल में आत्मविभोर भभूति जब अपनी शेखी बगार रहा था, तभी सुशांत ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनकर उस पर दो गोलियां दाग दी थी। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई भभूति के इलाके में भभूति के ही हाथ से बंदूक छीनकर भभूति को ही गोली मार देगा। सुशांत वाकई में एक पक्का निशानेबाज था, एक शूटिंग चैंपियन जिसकी जान पर बनी हुई थी, जिसे पता था कि उसका अंजाम बस मौत है। इसलिए उसने भभूति की लापरवाही का फायदा उठाकर उसके सीने में दो गोलियां उतार दी थी। इसी बीच एक बदमाश ने सुशांत पर गोली चलाने की कोशिश की, मगर सुशांत ने उसे भी ठेर कर दिया। बूढ़ा जोर से चिल्लाने लगा,
यो काई कियो तू, अरे मारो इन्हें।
मगर उसके चिल्लाते ही सुशांत ने एक गोली उस बूढ़े पर भी दाग दी। सुशांत ने जानबूझकर गोली उसके कंधे में मारी थी। बूढ़ा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सुशांत उसे दूसरी गोली मारने वाला था, मगर उससे पहले ही अनंत ने उसे रोक दिया। सुशांत, इसे मत मारना। तब तक वहां और बदमाश भी आ चुके थे। सुशांत ने बूढ़े की कनपटी पर बंदूक लगाते हुए कहा,
अगर किसी ने कुछ किया ना तो मैं इसको मार दूंगा।
बदमाश समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। तब तक अनंत भी वहां गिरे बदमाश की बंदूक उठा चुका था। उसने कहा,
तुम्हारा भभूति मर चुका है, अगर मेरी बात मानोगे तो तुम सबका फायदा है। इतने पैसे मिलेंगे जितने जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे, बोलो।
मगर बदमाशों ने कोई जवाब नहीं दिया। असल में वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें करना क्या है। ऐसे में सुशांत ने चिल्लाकर बूढ़े से कहा,
ए, इनको बोल दे कि पीछे हट जाएं, वरना सबसे पहले तू मरेगा।
ये बल्ली पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे। मारने और मरने से किसी को डर नहीं लगता था। बूढ़े पर सुशांत की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसे जता रहा था जैसे उसने सुशांत की बात सुनी ही नहीं। वो तो बस गुस्से में सुशांत की तरफ देखे जा रहा था। मगर बदमाशों में से एक बदमाश पीछे हट गया। उसके पीछे हटते ही बाकी बदमाश भी एक एक करके पीछे हटने लगे। अनंत ने उन्हें फिर से समझाया,
तुम लोग मुझ पर भरोसा करो, तुम सबका फायदा होगा।
सारे बदमाश पीछे हट चुके थे, मगर सुशांत अभी भी सतर्क था। बूढ़े ने अनंत से कहा,
यो ठीक कोनी करियो तू, तू काल शंकु से कोनी भाग सके है।
सुशांत ने उसे झिड़क दिया, चुप कर बे। इस बार अनंत ने कुछ नहीं कहा। सुशांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा,
तो हमने प्रारब्ध को बदल दिया है।
अनंत उसकी बात समझ नहीं पाया। सुशांत ने वापस अपनी बात दोहराई। अब अनंत को समझ आ गया कि सुशांत क्या कह रहा है। उसका चेहरा खिल उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस खूंखार शख्स से वो कब से डर रहा था, उसकी पूरी दहशत महज चंद सेकंडों में हवा हो गई थी। वो विस्मित सा चारों तरफ देखने लगा। सुशांत ने पूछा,
तो अब हम क्या करने वाले हैं?
अनंत ने कहा, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें उस देवता को बुलाने के लिए शंकु को उस जगह रखना होगा। उन्होंने काल शंकु को नियत जगह पर रख दिया। जल्द ही शंकु में कंपन शुरू हो गए। तभी अनंत को लगा जैसे बूढ़ा कुछ बड़बड़ा रहा हो। वो उसके पास गया। बूढ़ा उसे देखते ही बोल उठा,
तू जाने है, काल शंकु कोई न माफ ना करे है, तू विधि का विधान ने कोनी बदल सके है।
अनंत ने उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा,
पर हमने बदल दिया है।
बूढ़ा हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो अनंत पर हंस रहा है। उसकी हंसी ने अनंत को परेशान कर दिया था। उसने बूढ़े से उसके हंसने की वजह पूछने की कोशिश की, मगर वो तो बस हंसे जा रहा था। अनंत को लग गया कि जरूर अभी भी कुछ गड़बड़ है। उसने देखा सुशांत काल शंकु के पास खड़ा उसे निहार रहा था। अनंत ने सुशांत को आवाज दी,
सुशांत, सुशांत।
ऐसा लग रहा था जैसे सुशांत काल शंकु के जादू में खोसा गया था। लेकिन अगली बार आवाज देने पर वो अनंत के पास आ गया। बूढ़ा अभी भी हंसे जा रहा था। सुशांत ने पूछा,
ये पागलों की तरह क्यों हंस रहा है?
अनंत के खुद के पास भी सुशांत के सवाल का जवाब नहीं था। उस बूढ़े की आवाज अनंत के कानों में गूंज रही थी। उसने आज तक किसी को इस तरह हंसते नहीं देखा था। सुशांत को भी उसकी हंसी से चिढ़ होने लगी थी। उसने बंदूक की नली बूढ़े की तरफ कर दी। अनंत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेवकूफी नहीं सुशांत। अचानक से बूढ़ा हंसते हंसते रुक गया। अनंत और सुशांत दोनों हैरत से उसे देख रहे थे। तभी अचानक वहां फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे काफी सारे लोग AK-47 जैसे हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। अनंत चौंक उठा, अनूप सिंह। उसने बूढ़े के चेहरे की तरफ देखा। उसे वहां एक अलग ही रहस्यमयी शांति दिखाई थी। अनंत सुशांत की मदद से बूढ़े को लेकर एक चट्टान की ओट में हो गया। अनंत ने पूछा, मगर जब आपको पता था कि अनूप सिंह हमला करेगा और वो आप सब लोगों को मार देगा, तब भी आपने उसे जिंदा रहने दिया? बूढ़े ने कहा, अरे पागल, विधि का विधान ने बदलियो को नहीं जा सके है। मां की किस्मत अठे तक की ही है। मारा मरबा को टैम आ गयो है। अनंत ने उसे समझाया, नहीं, मैं अनूप सिंह से बात करूंगा। उसे आपको छोड़ना ही होगा। आपके बगैर यह काम पूरा नहीं हो सकता है। तब तक फायरिंग की आवाज बंद हो चुकी थी। कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे थे। अनंत ने फिर से कहा, बाबा आप जिंदा रहेंगे, सुशांत जिंदा रहेगा, हम इसे बदल कर रहेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बूढ़े को अनंत की आवाज में सच्चाई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। अनंत को लगा कि बूढ़े को उसकी बात समझ आ गई है। लेकिन अचानक से वो बूढ़ा जोर से चिल्लाने लगा, किस्मत ने कोई को नहीं बदल सके है, ना मैं और ना ही तू। ये कहते हुए उसने अपने कपड़ों में छिपा एक छोटा चाकू निकालकर सुशांत के गले में घोंप दिया। सुशांत के गले से खून का फव्वारा बहने लगा। बूढ़े ने एक घातक शिकारी का सवार किया था। अनंत जोर से चीख पड़ा, नहीं। बूढ़ा कहने लगा, काल शंकु के चक्र से कोई ना भाग सके है, कोई ना भाग सके है, माने यो चक्र पूरा करनो ही है। ये कहता हुआ बूढ़ा चट्टान की ओर से निकलकर बाहर भाग गया। अनूप सिंह के आदमी, जो इस छीना झपटी की आवाजें सुनकर अलर्ट हो चुके थे, उन्होंने बूढ़े पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अनंत के लिए फिर से सब कुछ खत्म हो चुका था। सुशांत की मौत हो चुकी थी। अनूप सिंह के लिए काम कर रहे पुलिस ऑफिसर ने वहां का नजारा देखकर अंदाजा लगाया कि बल्लियों ने अनंत और सुशांत को किडनैप कर लिया था और किसी वजह से वो इन्हें यहां तक ले आए थे। इसलिए अपने दोस्त की मौत में गमजदा अनंत को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद फिर से वही सब हुआ जो दो बार पहले हो चुका था। अनूप सिंह फिर से देवता के सवालों का जवाब नहीं दे सका, जिसकी वजह से वो और उसके सारे साथी देवता के कोप का शिकार बन गए। देवता ने फिर से अनंत से धन, विजय और सफलता में से कुछ चुनने को कहा, मगर अनंत ने उससे फिर से अपना दोस्त मांग लिया। बदले में देवता ने उसे एक आखिरी मौका देने की बात कही और वापस से 9 फरवरी 2019 के दिन भेज दिया। इस बार अनंत को समझ आ गया था कि वो काल शंकु से भाग नहीं सकता है, इसलिए उसने अपने डर पर काबू पाते हुए काल शंकु का सामना करने का ठान लिया। 9 फरवरी 2019, समय चक्र संख्या 4। एक 4x4 जीप रेगिस्तान के थोरों में आगे बढ़ रही थी। जीप ज्ञान ड्राइव कर रहा था, जबकि अनंत, सुशांत और राज साथ में मौजूद थे। सुशांत ने अपना फोन चेक करते हुए कहा, यार अनंत, तू कहां लेकर आ गया है? इस इलाके में तो फोन का नेटवर्क तक नहीं है। राज ने पूछा, वैसे सर, एग्जैक्टली हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? अनंत, जो अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा था, उसने कहा, हम यहां खजाना ढूंढने आए हैं। आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय, पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 18। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस। और अब पॉडकास्ट वो कहानियां के लिसनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। डियर लिसनर्स, उम्मीद है कि आप कहानी को पसंद कर रहे होंगे। असल में यह कहानी समय यात्रा के साथ साथ प्रारब्ध यानी डेस्टिनी को लेकर भी है। क्या इंसान चाहे तो अपना प्रारब्ध बदल सकता है? अगर किस्मत ही सब कुछ है तो इंसान की कोशिशें क्या कोई मायने नहीं रखती हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। कहानी अपने चौथे चक्र फोर्थ राउंड में पहुंच चुकी है। ये इस पूरी कहानी में एक निर्णायक चक्र साबित होगा जो अनंत को फैसला लेने में मदद करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने कहीं भी इस कहानी को जबरदस्ती लंबा खींचने की कोशिश नहीं की है, बस वो सब लिखा है जो इस कहानी के फ्लो के लिए जरूरी था। अनंत का कालशंकु को लेकर यह चौथा चक्र फोर्थ राउंड बहुत जल्द, मतलब महज कुछ एपिसोड्स में ही समाप्त हो जाएगा। कृपया कहानी और कहानीकार में भरोसा बनाए रखें, क्योंकि हड़बड़ी और जल्दबाजी में कहानी पूरी करने में कहानी टाइम ट्रेवल की कहानी तो बन जाएगी, मगर कहानी का एक अहम उद्देश्य प्रारब्ध को समझना छूट जाएगा। और मुझे विश्वास है कि कहानी का जो कंक्लूजन निकलेगा उससे आप भी सहमत होंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए वो कहानियां।